ओम शांति। वाणी का पेज नंबर 315 है, 315 सब मिलकर इसकी वाणी में उच्चारण करेंगे।
निर्मल करनी ये जीवन सार, निर्मल करनी ये जीवन सार,
निर्मल करनी जीवन सार, निर्मल करनी जीवन सार।
करनी देवे मुकत द्वार, करनी देवे मुकत द्वार,
करनी देवे मुकत द्वार, करनी देवे मुकत द्वार।
परोपकार सत करनी मूल, पर उपकार सत करनी मूल,
पर उपकार सत करनी मूल, पर उपकार सत करनी मूल।
नित नित शोधो ये अमृत फूल, नित नित शोधो ये अमृत फूल,
नित नित शोधो ये अमृत फूल, नित नित शोधो ये अमृत फूल।
जीवन शांत परापत होई, जीवन शांत परापत होई,
जीवन शांत परापत होई, जीवन शांत परापत होई।
अंत काल परम गत लोई, अंत काल परम गत लोई,
अंत काल परम गत लोई, अंत काल परम गत लोई।
करो पुरुषार्थ ये सुखदाई, करो पुरुषार्थ ये सुखदाई,
करो पुरुषार्थ ये सुखदाई, करो पुरुषार्थ ये सुखदाई।
पर की से नित नित कमाई, पर की सेव नित नित कमाई,
पर की सेव नित नित कमाई, पर की सेव नित नित कमाई।
साचा ना होवे परगासो, साचा नाम होवे परगासो,
साचा नाम होवे परगासो, साचा नाम होवे परगासो।
अंग विकार जब चित का नासो, विकार जब चित का नाश हो साबन से वालाए के दुर्मत मैलो बहाए मंगत भयो कदारथ दुर्लभ सोजन आए
निर्मल करनी ये जीवन सार करनी देवे मुकट द्वार करनी तो हम सभी जानते हैं कर्म को कहते हैं लेकिन वाणी निर्मल करने की बात करते हैं तो हमारे अंदर मल कौन सा है इसको निर्मल करना है मल एक ही है वासना का मल मेरी मन बुद्धि में वासना का मल इकट्ठा हो गया है जिसके कारण मेरा मन या मैं हमेशा ही बेचैन रहता हूँ कोई भी दिन मेरा चैन से नहीं कटता तो कहते हैं निर्मल करनी ये जीवन सार इसका मतलब हुआ कि जीवन की सार क्या है अर्थात जीवन जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो कहते हैं कि निर्मल करनी जो कर्म जो वे ऑफ लाइफ आपको वासना से मुक्त कर दे या धीरे धीरे आपकी वासना को कमजोर करती चली जाए वो जीवन का रास्ता ठीक रास्ता है ऐसी करनी आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाती है अर्थात इस शरीर के बंधन से वासना के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दे वो करनी का आधार क्या है पर उपकार सत्करणी मूल नित नित सोधो ये अमृत फूल तो पर उपकार सत्करणी मूल सत्करणी तो उसे कहते हैं जो करनी आपको सत से जोड़ दे अर्थात ईश्वर के पास ले वो सत्करणी है लेकिन उसका आधार पर उपकार है हम सब स्वार्थ और उपकार ये दोनों चीजें जानते हैं अपनी वासना पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सारा स्वार्थ तो इसका इलाज फिर हमको आदत बनानी पड़ती है कि दूसरे का दुख हमको दिखाई पड़े और उसका दुख दूर करने की मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ईमानदारी से दिल से कोशिश करूं तो ये परोपकार की भावना है कहते हैं यदि ऐसा करता है तो नित नित सोधो ये अमृत फूल इसको अमृत का फूल कहा गया फूल से क्या होता है फूल से फल तैयार होता है तो ये वो फूल तैयार होगा वो फूल खिलेगा आपके जीवन में आपके मन के अंदर जो अमृत रूपी फल को जन्म देगा उस अमृत रूपी फल का नाम ही है ईश्वर अनुभव तो इस देह के अंदर आप मन की बेचैनी का अनुभव करते हो ईश्वर की शांति का अनुभव नहीं करते यदि आपने अपनी बुद्धि के निर्णय को बदला और स्वार्थी जीवन को धीरे धीरे कम किया और दूसरे का दुख आपको दिखाई पड़ने लगा उसके दुख दूर करने के लिए आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो फिर आपके जीने का तरीका बदल जाता है और आपके मन के अंदर जो वासना बढ़ती थी उसकी तुलना में आपके अंदर निर्माणता बढ़ती रहती है निष्कामता बढ़ती रहती है इसलिए वाणी करिए सेवा करे से मन सुख छोड़े निज सुख आत्म हृदय जोड़े सेवा करे से मन सुख छोड़े निज सुख आत्म हृदय जोड़े तो मेरे मन में क्या होता है आप कभी भी देख लीजिए मन के अंदर एक संकल्प होता है जैसे आपने संस्कार बनाए हैं, स्वार्थ के संस्कार बनाए हैं, संसार के सुख भोगने के संस्कार बनाए हैं, तो आपके अंदर मन के अंदर वैसे ही संकल्प उठेंगे, और वो संकल्प क्योंकि आपको बेचैन करता है, इसलिए आप उसको संसार में पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो देखने की चीज हो, चाहे वो सुनने की चीज हो, कोई भी वस्तु संसार में जिसका संकल्प आपके मन में उठता है, वो संकल्प इसीलिए उठता है कि आपको एक कमी का एहसास कराता है। जब आपको कमी प्रतीत होती है तो उस कमी के कारण आपके अंदर बेचैनी होती है, और उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए आप उस संकल्प को या उस कामना को पूरी करने की कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया है जिन्हें तो कहते हैं कि सेवा करे से मन सुख छोड़े। यदि तू दूसरे का दुख तुझको दिखाई पड़ता है, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करता है, उसके दुख निवारण के लिए, तो तेरे मन के अंदर जो अपने सुख का संकल्प उठता था बार बार, वो कमजोर पड़ जाएगा, तेरे अंदर करुणा पैदा हो जाएगी, तेरे अंदर दया भाव पैदा हो जाएगा। और ये परिवार में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, क्योंकि स्टार तो प्रारंभ से हमारा जो है वो परिवार से ही होता है। परिवार में ही देखा नहीं है आपके, एक ही परिवार में चार लोग हैं, या मिला जुला परिवार है, 10-20 लोग हैं, उनके बीच में आप जानते हैं किसका स्वभाव ऐसा है जो दूसरे का ख्याल रखता है, किसका स्वभाव ऐसा है जो अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा लेकिन दूसरे को पीछे कर देगा। तो ये भावना का ही तो अंतर है, सब अपने हैं, परिवार में तो अपने ही होते हैं, लेकिन वहां भी ये भेद आपको साफ नजर आए। तो इसका प्रारंभ जरूरी नहीं है समाज से हो, घर से ही हो सकता है। मैं जहां हूं, जिस हालत में हूं, मेरे अंदर भावना परोपकारी होनी चाहिए। परोपकारी का मतलब मुझको दूसरे का दुख दिखाई पड़ना चाहिए, उस पर तरस आना चाहिए, उसकी मानसिक बेचैनी का मुझको जो है पता लगना चाहिए कि इसके कारण से ये बेचैन है, तो मेरी जो सामर्थ्य है मैं अपने को थोड़ा पीछे करके इसकी इच्छा पूरी कर लूं। तो होगा क्या कि सेवा करे से मन सुख छोड़े, कि मन के अंदर जो संस्कार सुख भोगने के बने हुए थे, जिसको स्वार्थी जीवन कहते हैं, उस मन के अंदर वो संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे, और आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि दूसरे का दुख या दूसरे की बेचैनी आपको दिखाई पड़ने लगेगी, और उस बेचैनी से मुक्त करने के लिए आप पहले उसका काम करो। और इससे होगा क्या फिर, अगली बात, निज सुख आत्म हृदय जोड़े, इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो कहते हैं कि निज सुख आत्म हृदय जोड़े, हृदय कहते हैं बुद्धि को, मन और बुद्धि दो चीजें हैं ना आपके पास, तो तेरी जो बुद्धि है वो किसमें किससे जुड़ जाएगी, निज सुख, तेरा जो अपना सुख है जो कोई छीन ही नहीं सकता, और वो आत्म सुख है, आत्मा का सुख है, ईश्वर का सुख है, जिसको आनंद कहते, उससे तेरा मन जुड़ जाए। अर्थात मन के अंदर कल्पना या संकल्प ईश्वर का उठेगा, सेवा का उठेगा, ईश्वर की याद करने का उठेगा, तो कहां ले जाएगा फिर ये, तो तेरे संस्कार जब इसके तैयार हो जाएंगे प्रभु भक्ति के, तब क्या होगा फिर ये, निज सुख आत्म हृदय जोड़। तो ये तेरा जो परोपकारी भावना थी तेरे अंदर, ये परोपकारी भावना तुझको आत्म सुख से जोड़ देगी, अर्थात शांति से जोड़ देगी, आनंद से जोड़ देगी, जो संसार में बिना पैसे के मिलता है, तेरे अपने शरीर में स्थित है वो, तेरे अपने शरीर में प्राप्त है, लेकिन भावना जब तक तेरी परमार्थी नहीं होती, परोपकारी नहीं होती, तब तक तू स्वार्थी बना रहता है और इस आनंद से तू वंचित रहता है। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो दूसरी बात वाणी कह रही है, मन की अगन शांत ना होई, पर की सेव ना हृदय जोई। यदि तूने अपनी बुद्धि में इस बात का निर्णय नहीं किया कि पर की सेवा मानव जन्म लेकर क्यों जरूरी है, परोपकारी जीवन व्यतीत करना क्यों जरूरी है, जब तक इस बात को तूने वाणी के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा नहीं सीखा, तेरी बुद्धि का निर्णय नहीं बदला, तू स्वार्थी ही बना रहा, तो फिर तेरे मन की जो अग्नि है, वासना की अग्नि है, ये शांत नहीं होगी। और आप समाज में देखते ही हैं कि स्वार्थ किस कदर अंधा होता है कि पहले तो वो जो प्राप्त सुख है उसको भोगता है, जो उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं, फिर उसका अपनी कमाई में गुजारा नहीं चलता, जो सुख प्राप्त है उसमें उसका काम नहीं चलता, फिर दूसरों का सुख छीनने की कोशिश करता है। और सोसाइटी में देखते हैं कैसे कैसे राक्षस पैदा हो जाते हैं इसी पढ़े लिखे समाज में, जो देश को चलाते हैं, जो राज्य को चलाते हैं, वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। स्वार्थ ऐसी अंधी आ गई है कि पढ़ाई लिखाई सारी गायब हो जाती है, दूसरे का दुख देखना भी आपको आपकी आंख बंद हो जाती है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता, और आप पाप करने की ओर अग्रसर हो जाते हो। पढ़े लिखे होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, बड़ी कैपेसिटी आपके अंदर होने के बाद भी, आप इसी संसार में, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में माफिया में शामिल हो जाते, पतन कहां तक आपको ले जाता है। तो विचार करो, जो दूसरे का सुख छीनने की आदत जिसकी हो, आपकी बुद्धि कभी ये स्वीकार करेगी क्या? उसके मन में अशांति नहीं होगी? आपसे 10 गुना 50 गुना 100 गुना उसके मन के अंदर अशांति होगी। जो बाहर से देखने में इतनी माया इकट्ठी कर ली है, लेकिन जो मन को देखना जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी अशांति होती हो। एक दिन भी वो चैन से ना सो सकता, ना खा पी सकता, न रह सकता। तो सत्पुरुष अंदर की बात है। यदि मैं केवल स्वार्थी हूं, अपनी कमाई करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, अपने परिवार का पालन करता हूं, है तो ये स्वार्थ जीवन ना। तो ये स्वार्थ जीवन धीरे धीरे आपको, यदि गुणों की बात की जाए तो पहले रजोगुणी बना देता है, फिर रजोगुणी से ये तमोगुणी बना देता है, अर्थात बुद्धि में अंधेरा आ जाता है। स्वार्थी जीवन के कारण बुद्धि में अंधेरा हो जाता है, बुद्धि जो है जागरूक नहीं रहती। तो इसीलिए मानव जन्म लेकर यदि मैंने परोपकारी जीवन अपनाने की कोशिश नहीं की, चाहे कोई भी ऐप चुनाव, जैसे एक बड़ा भारी ऐप होता है नाम कमाना, ये आम देखने को मिलता है। तो जब नाम कमाया जाता है तो विचार करो, नाम किसका कमाओ? जो मनुष्य नाम कमाने की कोशिश करता है उसका पहला दोष क्या है? पहला दोष यह है कि उसके अंदर यह भाव पक्का हो जाता है कि मैं शरीर ही हूं, इसके ऊपर से सोच होती नहीं। बातें वो धर्म भी कर सकता है, बातें वो शास्त्रों की पढ़ के भी सुना भी सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि के निश्चय में केवल यही बना रहेगा कि मैंने अपना नाम कमाना है। नाम तो देह का है, तो इसीलिए उसका वो जीवन बनावटी होगा। उसका प्रभाव क्या होगा कि उसके अपने मन में शांति कभी नहीं मिलेगी। वो नाम कमा सकता है, क्योंकि ये भी भाग्य की बात है। किसी के भाग में यदि नाम है तो वो परिस्थितियां उसको मिल जाएंगी कि प्रभु स्वयं उसके नाम को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो प्रारब्ध लेकर आया। मान अपमान महाजी कहते सब ये जो है प्रारब्ध है, ऐसी कंडीशन मिल जाएंगी आपका अपमान होगा, ऐसी कंडीशन जाएंगी आपका मान होगा, लेकिन दूसरा उसको देख के ईर्षा करेगा। जिसको नाम की इच्छा उसको तो ईर्षा करेगा, कहेगा इसका नाम हो रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, तो वो अपना नाम कमाने की कोशिश करेगा। तो नाम कमाने का मतलब क्या हुआ कि अहंकार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मनुष्य जन्म मिला था निर्माण होने के लिए, मैं अपने अहंकार की फसल पैदा कर रहा हूं, तो देख कौन रहा है मुझे? देख केवल अंतर्यामी ईश्वर रहा है मुझे। लोक दृष्टि में मैं कुछ भी हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अंतर्यामी ईश्वर मुझे देख रहा है। तो शांति जो है वो ईश्वर के अंदर है, और संसार में तो वासना है, दो ही चीजें हैं। निर्वास होने का रास्ता ईश्वर से होकर जाता है, वो अंदर का रास्ता है, और वासना फैलाने का रास्ता संसार से होकर जाता है। इसीलिए बुद्धि की बुद्धि के ज्ञान के लिए ये सारी वाणी प्रभु के द्वारा प्रकट होती है, ताकि हम इसका स्वाध्याय करें और इससे इस रहस्य को सीखें। वो कह रहे हैं कि जीवन शांत परापत होई, अंतकाल परम गत लोई। परोपकारी जीवन का फायदा क्या होगा? कहते हैं जीवन शांत परापत होई, जीते जी जब तक तू ये सांसारिक जीवन जी रहा है इसमें तेरे मन के अंदर शांति बनी रहेगी, बुद्धि शांत रहेगी। अंतकाल परम गत लोई, और जब तेरा आखिरी वक्त आएगा तो तुझको परम गति प्राप्त होगी। परम गति कौन सी है? परम कहते हैं परमेश्वर को, ब्रह्म को, आत्मा। तो उसकी याद तुझको आएगी, उसके संस्कार तेरे मन के अंदर बन चुके होंगे, इसीलिए अगला जन्म जब मिलेगा भी तुझको, इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ तो उस परम गति के लिए तू जिएगा जिसकी कसर इस जन्म में रह गई। जैसे महाजी का जब जन्म हुआ, महाजी कह रहे थे, खुद कहा उन्होंने, प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि संसार क्या है और कर्ता क्या है, लेकिन इन्होंने संसार में संसारियों की तरह रहना ही उचित समझा, कोई स्पेशल जीवन नहीं होता है। सब जानते हैं कि जो कसर रह गई थी इस जन्म में उन्होंने पूरी कर ली। तो उनका जो जीवन हम जब याद आता है तो हमारे मन में शांति आती है या अशांति आती है? तो जिसके जीवन को देखकर हमारे मन में शांति आती है, हमको परोपकार की प्रेरणा मिलती है, तो जिसके अंदर वो जीवन था उसको कितनी शांति रहती है। इसीलिए कहते हैं कि करो पुरुषार्थ ये सुखदाई, पर की सेव नित नित कमाई। तो इसकी मैंने आदत डालनी होती है, इसलिए महाजी ने 5 नियम में सेवा साधन बताया कि मनुष्य जन्म लेकर मैंने यदि दूसरे का दुख देखना शुरू नहीं किया तो इसकी इसका प्रारंभ अपने घर से ही होता है। घर में ही मुझको पहले आदत बनानी होती है कि मुझको दूसरे का दुख दिखाई पड़ना चाहिए, दूसरे का अधिकार पहले दिखाई पड़ना चाहिए, अपने को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए, वहीं से ये आदत पड़ती है। लेकिन बाद में जब मैं सत्संग श्रवण करता हूँ, शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, किसी गुरु पर विश्वास करके उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन बनाता हूँ, फिर तो ये निष्काम सेवा वाला परोपकार है कि परोपकार में कामना को खत्म करने के लिए करता हूं। उस समय जाकर पता लगता है कि अंदर जो मैं शिकायत करता था कि मुझसे सिमरन नहीं बन पाता, क्या करूं, सिमरन करने बैठता हूं तो प्रभु की याद नहीं आती, संसार की याद आती है, तो ये शिकायत उस व्यक्ति की दूर होने लगती है जिसका जीवन परोपकारी होने लगता है। लेकिन ऐसे परोपकारी नहीं होगा, मैकेनिकली परोपकारी नहीं होगा, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, पुनर्जन्म क्या होता है, जब पुनर्जन्म होता है तो यहां से मैं क्या साथ ले जाता हूं जो मुझको अगले जन्म में बिल्कुल तैयार मिल जाता है। ये सारी बातों का ज्ञान जब तेरी बुद्धि में होता है तब तू अपनी मौत को परमानेंट नहीं समझता कि मर गया तो मैं सब कुछ खत्म हो जाए। वास्तव में तेरा कुछ भी खत्म नहीं होगा, शरीर बदलेगा केवल, और तेरी जो कमाई है संस्कारों की, तेरी जो मन बुद्धि है, तेरी जो इंद्रियां है, वो वैसी ही सुरक्षित तुझको नई देह में मिल जाएगी। इसलिए मैंने कमाई वो परमानेंट करनी है जो इस जन्म में साथ लेकर जाऊं, और जो कमाई अगले जन्म में मुझको ईश्वर मार्ग में चलने में सहायता करे। कमाई तो एक पापी व्यक्ति भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन मैंने इस जन्म में वो कमाई करके ले जानी है जो अगले जन्म में ईश्वर की तरफ बढ़ने में मेरी सहायता करे। इसीलिए याद रखिए, चाहे आपके जीवन का छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, लेकिन यदि आप देखिए कि परोपकारी कर्म होता है तो आपको याद रहता है। एक बार की बात है, ये 85 के आसपास की बात होगी, मैं लखनऊ सेक्रेटरियट में एक काम के लिए जाने वाला था, तो फादर बोले कि हमारी पेंशन का एक काम है वो अभी तक बनी नहीं है, वहाँ जरा कांटेक्ट करके ये मेरा लेटर दे देना उनको, और ये काम हो सके तो करवा देना। कोई बात नहीं, मैं जब लखनऊ गया जो ऑफिशियल काम था वो किया, उसके पश्चात सेक्रेटरीट में सेक्शन में गया जहां वो काम होना था। अब मैं तो किसी को जानता नहीं था, तो एक ख्याल आया, एक चपरासी बैठा हुआ था वहां पर, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे पिताजी का एक छोटा सा काम है, ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है कि पेंशन में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको नहीं मिल पा रही है, आप कृपया मेरी हेल्प कर दीजिए। वो तुरंत उठा और मेरे सामने उसने सारा रिकॉर्ड तलाश करके वो फाइल निकाली और जिससे वो काम होना था उसके पास मुझको ले गया। वो लेटर, वो फाइल उस बाबू को उसने दी। बाबू ने दो मिनट मुझसे बात करी और उसने कहा कि अब आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो गया। अब जब मैं रूम से बाहर निकला तो पीएनए मेरे साथ था, तो मेरे मन में भावना आई कि इसने काम कराया है मेरा, चलो कैंटीन में चल के कुछ चाय पिला देते हैं, कुछ इसको ओब्लाइज कर देते हैं, कुछ दे देते हैं। मैंने उसे कहा कैंटीन में चलो, बोला बस आपका काम हो गया, आप बेफिक्र रहिए, मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया। आज कितने साल हो गए, 15 और 25, 40 साल लगभग होने होंगे, आज भी मुझे उसकी याद आ रही है। क्या काम था वो, लेकिन उसका स्वभाव था, सेवा भाव था उसके अंदर। उसने मेरी बेचैनी को पढ़ा और निष्काम रूप में उसने मेरा काम किया। तो आप बताइए कि जब मुझे भाई है उसकी याद है तो प्रभु को उसकी याद नहीं रहेगी क्या? 40 साल बाद मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, और याद करता है इन बातों। देखिए उसकी भावना क्या थी, वो भावना मुझको मजबूर कर रही है याद करने की। उसने मेरे अंदर संस्कार बना दिया कि ऐसे होती है सेवा। तो सेवा कोई स्पेशल क्रम नहीं होता, भावना होती है कि इसको पैसा मिल सकता था लेकिन इसने नहीं लिया। अच्छा, और पीएन है, क्या सैलरी नहीं होगी उसकी। तो इसीलिए ये आपको कहां ले जाती है सेवा, इसकी कोई गिनती नहीं होती। इसलिए जो है परोपकारी जीवन होना चाहिए और ईमानदारी का जीवन होना चाहिए। प्रभु ने जो दिया है उसमें गुजारा करने की आदत बनानी चाहिए, तब ये बात आती है कि साबन सेवा लाए के दुर्मत मैल बहाए, मंगत भयो कदारत दुर्लभ सो जन आए। सेवा रूपी साबुन जो लगाता है दुर्मत मैल बहाए, दुर्मति का मैल वो धो डालता है। दुर्मति क्या क्या होती है, मैं शरीर हूं ये दुर्मति है, मैं करता हूं ये दुर्मति है। तो ये दोनों ही भावना उसके अंदर से निकल जाती हैं, तू करता तू हटता सर्व क्रिया। तो मंगत भयो कदारथ, कदारथ का मतलब कृतार्थ, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है। दुर्लभ सो जन आए, ऐसे जो मनुष्य हैं संसार में वो दुर्लभ हैं, वो अपने आप में स्पेशल मनुष्य होते हैं, जो समाज में नजर आते हैं, सबको याद आते हैं। ये परोपकार जो छोटा मोटे से शुरू होता है ये आगे चलकर आपको ईश्वर से जोड़ देता है। इसीलिए अपने जीवन में परोपकारी भावना होनी ही चाहिए। मैं घर में भी स्वार्थी ना बनूं, उसको दूसरों का ख्याल होना चाहिए। ओम धन्य।